ओम शांति, ओम शांति। गायन है कि जब भक्तों पर भीड़ पड़ती है तब तब भगवान आते हैं। भक्तों पर भीड़ पड़ती है अर्थात जब भक्त बहुत दुखी हो जाते हैं, तो दुखी तो इस समय सभी है, लेकिन इस कलयुग के अंत में केवल दुखी ही नहीं है, इनसे भी कड़ा शब्द है। कौन सा? दुखी तो फिर भी चलो द्वापुर से हुए, लेकिन उससे भी कड़ा शब्द है पीड़ित है, पीड़ित। और किसने पीड़ित किया है? माया रावण ने। तो जब सब भक्त पीड़ित हो जाते हैं माया रावण द्वारा, तब भगवान आते हैं। और भगवान आकर के इस पीड़ा से मुक्त करते हैं, अपने घर ले जाते हैं, उसके लिए पावन बनाते हैं। तो अब बाबा आए हैं हमको सब दुखों से छुड़ाने, पीड़ाओं से छुड़ाने। तो कितनी खुशी होनी चाहिए कि अब हमारे दुख के दिन गए की गए। तो बाबा देखो ऐसी दुनिया में आते हैं, और ऐसी दुनिया को बाबा ने आज एक और नाम दिया है। पीड़ित तो सभी है ही है, लेकिन बाबा ने इसको और कड़ा नाम दिया है। बाबा कहते ये मगध देश है, मगध देश शास्त्रों में वर्णन है, मगध देश जहां पर सब पीड़ित है, सब पीड़ित है। और क्या क्या खाते हैं, क्या मांस मदरा, उस पीड़ा से मुक्त होने लिए सब तमोगुणी बातें करते हैं, वो है मगध देश। तो ये सारी दुनिया अब जैसे मगध देश बन गई है। तो ये भगवान का ही अभी कर्तव्य है, कार्य है, जो इस मगध देश से हमें मुक्त करते हैं। तो उसकी खुशी, उसका फिर नशा कि ऐसे बाप के हम बच्चे एडॉप्टेड हुए, ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ने हमको अपना बनाया है। अभी तो कोई ब्राह्मण नहीं कहेगा मैं पीड़ित हूँ माया से, दुनिया में तो सब है ही है। तो पीड़ाएं कहो, दुख कहो, दर्द कहो, चिंताएं कहो, सबसे बाबा हमको मुक्त करने आए हैं। तो वो खुशी रहे, परंतु केवल खुशी नहीं, साथ साथ ये संकल्प भी हो कि उसके लिए हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। बाबा हमें मुक्त करने तो आए हैं, लेकिन वो मुक्त हम तब हो सकेंगे जब बाबा जो कहते हैं उस पर हम चलेंगे। अगर चलेंगे नहीं तो फिर मुक्त कैसे होंगे? तो इसीलिए बाबा कहते हैं मेरे सपूत बच्चे मेरी हर श्रीमत का पालन करेंगे और मैं उनको सब पीड़ाओं से मुक्त कर देता हूँ। तो कितने कष्ट है इस समय दुनिया में, लेकिन बाबा के बच्चों को कोई कष्ट है? हाँ, किसी को कोई कष्ट है? कोई नहीं, सब कष्ट बाबा ने हमारे ले लिए हैं। अगर अभी भी कोई कहता है मुझे है थोड़ा कष्ट, तो इसका मतलब है कि बाबा को अभी तक पहचाना नहीं है, उस ज्ञान को पूरा समझा नहीं है, उनकी श्रीमत पर चलते नहीं है, तब लगता है कि यहाँ कष्ट है, नहीं तो कोई कष्ट नहीं। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य आज 23/5/2026 है। मीठे बच्चे, रावण ने तुम्हें बहुत पीड़ित किया है। कैसा कड़ा शब्द है ये, रावण ने तुम्हें बहुत पीड़ित किया है। अभी तुम भक्तों का रक्षक भगवान आया है तुम्हारी पीड़ा को दूर करने। रावण ने तुम्हें बहुत पीड़ित किया है, अभी तुम भक्तों का रक्षक भगवान आया है तुम्हारी पीड़ा को दूर करने। प्रश्न है, सपूत बच्चों की मुख्य दो निशानियां सुनाओ। सभी सपूत बच्चे बैठे हुए ना बाबा के, तो बाबा सपूत बच्चों से पूछते हैं कि सपूत बच्चों की मुख्य दो निशानियां बताओ। हाँ, तो निशानियां तो बहुत होगी, आज बाबा ने दो मूल निशानियां बताई है। उत्तर है, सपूत बच्चे सदा मात पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनेंगे। उनका यही लक्ष्य होगा, हमको मात पिता समान बनना है, बाप समान बनना है। तो सपूत बच्चे सदा मात पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनेंगे, खूब पुरुषार्थ में लगे रहेंगे। और दूसरा क्या होगा, उनकी बाप से दिल बहुत सच्ची होगी। एक तो फॉलो करेंगे और उसके साथ साथ बाप से दिल बहुत सच्ची होगी। सच्ची दिल वाले सदा श्रीमत पर चलेंगे। अब श्रीमत पर नहीं चलेंगे, सच्ची दिल नहीं है, तो फिर क्या परिणाम होता है? अगर अंदर में सच्चाई नहीं है तो याद में भी रह नहीं सकते। बाबा की याद नहीं रहती, याद नहीं रहती कहते हैं तो जरूर अंदर में कोई खोट है, सच्चाई नहीं है। और सच्चाई नहीं है क्योंकि श्रीमद पर पूरा चलते नहीं है। इन सबका आपस में संबंध है। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। उसमें बहुत शब्द आते हैं, कैसे भक्तों पर भीड़ पड़ी, भक्त पीड़ित है, तो भगवान ही आकर के उनकी रक्षा करते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने ये भक्ति मार्ग का गीत सुना। भक्त इस गीत का अर्थ नहीं जानते, कौन सी पीड़ा है, कौन सी आफत आई है, और भगवान जो भोलानाथ है वो कैसे मुक्त करते। बाबा कहते हैं उसका सही अर्थ भक्त नहीं जानते। तुम भगवान के बच्चे बने हो, भगवान रक्षक है, ऐसे भक्तों का रक्षक कोई और नहीं है। तो भगवान रक्षक है, तुम बच्चे बने हो तो भगवान रक्षक है भक्तों का, तुम भी रक्षक हो। और भगवान तो है, पर बाबा कहते तुम भगवान के बच्चे हो तो तुम भी रक्षक हो, तुम भी रक्षक हो भक्तों के। भक्तों की रक्षा करते हो ना, आते ना आत्माएं कैसी पीड़ित होती है, दुखी होती है, कितनी अशांत होती है, और बाबा के घर आती है तो उनको कितनी शांति मिलती है। तो कहेंगे ना कि हाँ, बाबा के बच्चे भी रक्षक बनते हैं भक्तों के। भक्तों की रक्षा करते हो, कौन सी आफत आई है भक्तों पर, कौन सी आफत है जो भगत रक्षा करने के लिए भगवान को बुलाते हैं, कौन सी आफत आई है? भक्तों को रावण का बहुत दुख है। जो भी अगर दुख अपना वर्णन करते हैं, है तो कोई ना कोई विकार के कारण ही वो दुख आया है। इसलिए बाबा कहते हैं रावण का बहुत दुख है भक्तों पर। रावण संप्रदाय पीड़ित है, किससे पीड़ित है? दुखों से। तो भोलानाथ को याद करते हैं, वो है रावण संप्रदाय, और तुम हो कौन सी संप्रदाय? राम संप्रदाय। और वो है रावण संप्रदाय और ये है राम संप्रदाय। भक्तों को ये पता ही नहीं है कि हमारा रक्षक कौन है। भल गाते हैं कि भोलानाथ रक्षक है, परंतु क्या रक्षा करते हैं, कौन सी रक्षा करते हैं, क्या रक्षा करते हैं ये नहीं जानते। तुम बच्चे अब समझते हो कि भोलानाथ शिव बाबा ही बिगड़ी को बनाने वाला है ना, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। तो भोलानाथ शिव बाबा ही बिगड़ी को बनाने वाला है। दुनिया को तो पता ही नहीं है कि भगवान भी किसको कहा जाता है। भले शिव का की महिमा गाते लेकिन सचमुच भगवान किसको कहा जाता है ये भक्तों को भी नहीं पता है। भगवान का पता हो, भगवान का पता हो तो साथ में और क्या पता हो, भगवान का पता हो तो फिर भगवान की रचना के आदि मध्य अंत का भी पता हो। रचयिता है ना, तो रचयिता का अगर पता हो तो रचयिता जो रचना रचते हैं उसके आदि मध्य अंत का भी पता हो। तो न भगवान को जानते हैं न रचना का ही पता है। इसलिए ऐसे मनुष्य संप्रदाय को क्या नाम देंगे, जो न रचयिता को जानते न रचना के आदि मध्य अंत को जानते। तो बाबा कहते ऐसी दुनिया को या ऐसी रचना को क्या कहेंगे, तो ऐसे मनुष्य संप्रदाय को क्या टाइटल दिया बाबा ने, ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा। वैसे कहते हैं श्रद्धा अच्छी चीज है, श्रद्धा भावना ये बहुत सुंदर है, आस्था, कितने सुंदर सुंदर नाम है, ये बहुत सुंदर शब्द है, परंतु अगर उसके पहले अंध शब्द जुड़ गया तो वो तो अच्छा नहीं है ना। अंधश्रद्धा, अंध भावना, अंध आस्था, तो अंध जहां आ गया वहां पर बाबा कहते हैं वो तो नीचे ही ले जाएगा, वो तो गिराएगा। तो अब तो बाबा कहते हैं ऐसे मनुष्य संप्रदाय को ब्लाइंड फेथ कहा जाता है, अंधश्रद्धा कहा जाता है। दूसरी तरफ फिर तुम हो, अब हमको अंधश्रद्धा नहीं है, क्यों, क्योंकि तुमको दिव्य दृष्टि मिली है। दिव्य दृष्टि मिली है सबको, जो समझते हमको दिव्य दृष्टि मिली है हाथ उठाओ। हाँ, दिव्य दृष्टि बाबा केवल साक्षात्कार को नहीं कहते, लेकिन तीसरा नेत्र भगवान ने आकर के दिया है ज्ञान का। तो तुमको दिव्य दृष्टि मिली है, अब तुम्हारा नाम ही है ब्रह्मा कुमार कुमारिया। बोर्ड पर भी नाम लगा हुआ है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। सिर्फ ब्रह्मा कुमारिया हो नहीं सकती है, बाबा उसको भी करेक्ट करते हैं, सिर्फ ब्रह्मा कुमारिया नहीं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी तो किसकी संतान, तो क्या कहेंगे, प्रजा पिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। पहले ये प्रजा पिता शब्द नहीं होता था, फिर बाबा ने करेक्ट करवाया, फिर सब बोर्ड को चेंज किया, प्रजा पिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखाया। प्रजा पिता ब्रह्मा है ना, पिता के पास तो बच्चे और बच्चियां दोनों होते हैं, प्रजा पिता ब्रह्मा को ही इतने ढेर बच्चे हो सकते हैं। केवल एक प्रजा पिता ब्रह्मा को ही ढेर इतने सारे बच्चे हो सकते हैं। तो समझना चाहिए कि बेहद का पिता है, हद के पिता को तो इतने बच्चे नहीं होंगे। ये भी जानते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाला वही बाप है जिसको निराकार कहा जाता है, ये हो गया बेहद का बाप। ये भी जानते हो हाँ, तो प्रजा पिता ब्रह्मा के भी बच्चे हैं और अनादि काल में शिव बाबा के बच्चे हैं, वो हो गया बेहद का बाप। तो दोनों हो गए बेहद के बाप, शिव बाबा भी और ब्रह्मा बाप भी। ये भी जानते हो कि परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। इसकी इनकी सारी रचना है कौन, सारी रचना है सब मनुष्य मात्र। तो सब मनुष्य मात्र वास्तव में शिव वंशी है, और ब्रह्मा वंशी भी क्या कहेंगे, सब मनुष्य मात्र है ना। सब मनुष्य मात्र वास्तव में शिव वंशी है। अभी तुम आकर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो, ये है। हाँ, हम कौन है, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान आके बने हैं, तो हम कौन सी संतान है। बाबा कहते तुम हो नई रचना, क्योंकि डायरेक्ट ब्रह्मा की संतान बनते हैं, तो ये है नई रचना। परम पिता परम आत्मा ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, तो तुमको ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहा जाता है। इतने बेहद के बच्चे हैं तो जरूर फिर बेहद का वर्षा भी लेते होंगे। बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है। शिव बाबा कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, तुम आत्माएं भी निराकार हो परंतु ज्ञान तो साकार में चाहिए। तुम जानते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, ब्रह्मा द्वारा रचना यहाँ होती है, सत्युग में नहीं ब्रह्मा द्वारा रचना होगी, ब्रह्मा द्वारा रचना यहाँ होती है संगम पर। शिव जयंती भी यहाँ मनाई जाती है, यहाँ मगध देश में ही जन्म लिया है। बाप कहते हैं ये देश बहुत पवित्र स्वर्ग था, उसमें भी भारत को बाबा मगध देश कहते हैं, फिर उसमें भी सिंध को बाबा कई बार मगध देश कहते थे, क्योंकि सिंध में बहुत मांस मदरा ये सब बहुत चलता था, बहुत धनवान भी थे ना, और विदेशों में रहते थे तो मांस मदरा भी बहुत चलता था, तो मगध देश में भगवान आए। तो परंतु बाबा कहते फिर यही स्वर्ग बनता है, सिंधु नदी सिंधु घाटी यही सबसे ऊंची घाटी मानी जाती है, फिर भगवान भी उसी स्थान पर आते हैं, फिर वही स्वर्ग बनता है। तुम बच्चों की बुद्धि में है शिव बाबा हमको फिर से राजयोग सिखाए पवित्र बनाते हैं। गाते भी हैं पतित पावन भक्तों के रक्षक भगवान, भक्त ही पुकारते हैं, पतित होते हुए भी अपने को पतित नहीं समझते हैं। तो बाप समझाते हैं तुम सब पतित हो, दुनिया में सब पतित हैं, पावन दुनिया सतयुग को पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। तो बाप तुम्हें क्या कर रहे हैं, बाप तुम्हें सब राइट बातें बताते, सब राइट, कोई भी ऐसा किसी गलत बात नहीं बताते, राइट बातें बताते। लाखों वर्ष की तो कोई चीज होती नहीं, मनुष्य घोर अंधियारे में है, समझते हैं घोर अंधियारे में कैसे हैं, समझते हैं कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है, और तुम जानते हो वो समझते कलयुग छोटा बच्चा है, तुम जानते हो कि मौत सामने खड़ा है, कितना अंतर हो गया। तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है, अंधियारे और रोशनी का वर्णन संगम पर ही किया जाता है, सब अंधियारे में है और बाबा ने हमें रोशनी दी है, ये अंधियारा और रोशनी ये संगम के लिए ही गायन है, तो संगम पर ही किया जाता है। अब तुम घोर प्रकाश में आए हो, सतयुग में तुम ये वर्णन नहीं कर सकेंगे, वहां कहेंगे क्या हम घोर अंधियारे में थे अब घोर प्रकाश में आए, ये संगम सतयुग में तुम ये नहीं वर्णन करेंगे, अभी वर्णन करते हो, वहां तो ये नॉलेज ही नहीं रहती है। इस समय बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं तुम सतयुग में सूर्यवंशी घराने के थे, फिर अंत में आकर कौन से घराने के बन गए, शूद्रवंशी घराने के बन गए। अब फिर ब्राह्मण वंशी बने हो, अभी तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल, सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल तुम हो, ऊंच से ऊंच ये ईश्वरीय कुल है ना। बाप के पास आते हैं तो बाबा पूछते हैं, जब भी बच्चे बाबा के पास आते थे तो बाबा पूछते थे, इसलिए बाबा कहते हैं बाप के पास जब आते हैं तो बाबा पूछते हैं, क्या पूछते हैं बाबा, बच्चे किसके पास आए हो। कई बातें पूछते थे बाबा, अधिकतर पूछते थे बच्चे पहले भी कभी मिले हो। आज बाबा कहते हैं, बाबा पूछते हैं किसके पास आए हो, क्योंकि वो तो समझेंगे ना कि भाई हम ब्रह्मा कुमारियों के गुरु के पास आए हैं, तो किसके पास आए हो। तो कहते हैं बाप के पास, जिनको टीचर समझाती थी बाबा कई प्रश्न करेंगे तो सही सही जवाब देना, तो इसीलिए बच्चे कहते हैं बाप के पास आए हैं। बाप तो दो है, एक है लौकिक बाप और दूसरा है पारलौकिक बाप, तो ये फिर कौन सा बाप है। फिर बाबा ये भी पूछते हैं, बाप तो दो ही होते हैं, ये कौन सा बाप है। तो टीचर को बताना पड़ता था, बाबा ऐसे पूछे तो कहो ये है अलौकिक बाप, एक है लौकिक दूसरा पारलौकिक, सभी शालिग्रामों का बाप तो एक ही शिव है। तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान टपकता है, टपकता है इनसे बूंद टपकती है तो हर वक्त ये ज्ञान टपकता है। हम एक बाप के बच्चे हैं जिससे वर्षा लेते हैं, निराकार वर्षा तो साकार द्वारा ही देंगे ना। तो बाप खुद कहते हैं मैं साधारण तन में आकर प्रवेश करता हूँ। अब बाप बच्चों को कहते हैं बच्चे, क्या कहेंगे सबसे पहले बच्चों को, बच्चे देही अभिमानी भव। सबसे पहला महावाक्य भगवान का, बच्चे देही अभिमानी भव, अपने को आत्मा समझो। ये देह तो विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा को ही 84 जन्म लेनी पड़ते हैं, न कि देह को। देह 84 जन्म नहीं लेता है, देह तो एक ही जन्म के लिए, पर आत्मा को 84 जन्म लेने पड़ते हैं, न कि देह को। देह तो बदलती रहती है, फिर दूसरे मित्र संबंधी मिलती है, मिलते हैं। एक देह छोड़ी, आत्मा ने दूसरी देह ली, फिर सारे मित्र संबंधी सब बदल जाते हैं, फिर दूसरे मित्र संबंधी मिलते हैं। अभी आत्मा को देहद के बाप से वर्षा लेना है, परम पिता परमात्मा द्वारा। तुम ही सुनकर फिर धारण करते हो, संस्कार तुम्हारी आत्मा में है, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं, शरीर में नहीं है संस्कार। क्यों कैसे माने कि आत्मा में संस्कार रहते हैं, शरीर में संस्कार नहीं है, क्या कहेंगे, आत्मा में ही संस्कार क्यों है, शरीर में संस्कार नहीं है क्या। तो क्यों बाबा कहते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं आत्मा में ही संस्कार है, ऐसे नहीं कि शरीर में संस्कार कहेंगे। इसे कहते ना आत्मा निकल गई, तो आत्मा क्या ले गई, जो उसने कर्म किए वो कर्म कैसे ले गई, अब वो कर्म कैसे ले गई, संस्कार के रूप में ले गई। फिर बच्चा पैदा हुआ तो वो जो पिछले जन्म के कर्म है वो साथ में लाया, किस रूप में लाया, भाग्य के रूप में लाया। तो कर्म ले गई आत्मा और भाग्य रूप में ले आई। और फिर बाबा दूसरा क्या कहते, आत्मा में ही संस्कार है शरीर में नहीं। क्यों, क्योंकि कहते पाप आत्मा पुण्य आत्मा, पाप शरीर पुण्य शरीर नहीं कहते। तो बाबा कहते हैं आत्मा, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं, ऐसे नहीं कि शरीर के संस्कार कहेंगे, नहीं, तुम्हारी आत्मा के संस्कार तमो प्रधान है, उनको अब चेंज करना है। काया कल्पत्रु कहा जाता है, काया कल्पत्रु बाबा हमारे आत्मा के संस्कार चेंज करके क्या बना देते हैं, इस काया को कल्पत्रु बना देते। कल्पत्रु का अर्थ क्या है, कल्प तरु, तरु माना वृक्ष, तो कल्प वृक्ष के समान इतनी लंबी आयु वाला बना देते हैं बाबा शरीर को सतयुग में भविष्य में। तो काया कल्पत्रु कहा जाता है, काया कल्प समान, कल्प वृक्ष के समान इतनी लंबी आयु वाला बाबा बना देते हैं। काया कल्प वृक्ष समान बनती है, आयु बड़ी रहती है। तुम जानते हो यहाँ तो आयु बहुत छोटी रहती है, छोटी आयु में ही बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है ना। कितना सुनते हैं, इतनी छोटी आयु में शरीर छोड़ा, अचानक हार्ट अटैक, हार्ट फेल हो गया। अभी कोई बड़ी आयु भी नहीं थी पर हार्ट फेल हो गया। बड़े बैठे हैं बड़ी आयु वाले और छोटे आयु वाले हार्ट फेल हो गया उनका। तो छोटी आयु में ही बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है। अभी तुम काल पर विजय पाते हो, वहां काल कभी खाता नहीं। काल के दो अर्थ होते हैं ना, एक काल है समय, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, और दूसरा काल है मृत्यु। तो अभी ये शरीर, तो तुम जानते हो ये वहां काल कभी खाता नहीं, अकाले कब शरीर छूटता ही नहीं है। ऐसे नहीं बैठे बैठे शरीर छूट जाए। तुम जानते हो वहां सतयुग में अकाले समय से पहले शरीर छूटता नहीं, पर जब समय पूरा होता है 150 साल की आयु होती है तब वो क्या समझती है आत्मा, अब ये शरीर बूढ़ा हुआ है, इसको छोड़कर नया लेना है। तो स्व इच्छा से आत्मा शरीर छोड़ती है, इनको छोड़कर नया लेना है। शरीर छोड़ने के समय भी बाजे बजते हैं। यहाँ कलयुग में भी अगर कोई को पर पोतरा पैदा हुआ, पोतरा तो ठीक है, पर पोतरा या तर पोतरा चौथी पीढ़ी जैसे हुई और फिर वो अभी तक जिंदा है और फिर शरीर छोड़ता है तो बाजे बजते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी आयु में उसने शरीर छोड़ा। तो बाबा कहते हैं, तो सतयुग में भी तो ऐसा ही होगा ना। तो बाबा कहते हैं शरीर छोड़ने समय भी बाजे बजते हैं और जन्म लेने समय तो बाजे बजते ही हैं। राजा को बच्चा पैदा हुआ, कितने बाजे बजेंगे राजा को बच्चा पैदा हुआ। तो जन्म लेने समय भी बाजे बजते हैं, वहां रोने की तो बात ही नहीं होती है। तुमको भ्रमरी का मिसाल भी समझाया है, तुम हो ब्राह्मण और ब्राह्मणिया। तो सतयुग में बाबा सांप का मिसाल देते, अपनी स्व इच्छा से चमड़ी निकालता है, नई चमड़ी आ जाती है। तो भ्रमरी सांप, तो बाबा कहते ये तुम्हारे लिए मिसाल है, तुमको भ्रमरी का मिसाल भी समझाया है, तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणिया। ब्राह्मणी कहो या भ्रमरी कहो, राशि एक ही है, भ राशि। ब्राह्मणी कहो या भ्रमरी भ्रमरी कहो, राशि मिलती है। जो काम भ्रमरी करती है वही तुम भी करते हो। कौन सी कौन सा काम भ्रमरी करती है, कीड़े को भो करती है, उस कीड़े में पंख आ जाते हैं। तो तुम भी विकारी कलयुगी मनुष्यों को ज्ञान देते 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 वो भी उनको भी पंख आ जाते, ज्ञान योग के पंख आ जाते। तो बाबा कहते वो तुम भी करते हो, वंडर है ना। भ्रमरी का दृष्टांत, कछुए का दृष्टांत, सर्प का दृष्टांत, ये सब शास्त्रों में है। सन्यासी आदि भी ये मिसाल देते हैं। अभी तुम बच्चे बाप द्वारा ये सब समझ रहे हो। वो तो हुआ भक्ति मार्ग, पास्ट का गायन करना, इसका फिर बाद में गायन होगा। भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, पास्ट का गायन करते हैं, श्री कृष्ण ने ये किया, श्री राम ने ये किया, शंकर ने ये किया, पास्ट का जैसे गायन करते हैं। और फिर बाबा कहते अभी तुम वो प्रैक्टिकल में कर रहे हो, फिर तुम्हारा ही गायन फिर भविष्य में होगा ना, द्वापर युग में जब शास्त्र बनेंगे। तो अभी अभी तुम बच्चों द्वारा ये सब समझ रहे हो, तो वो तो वह भक्ति मार्ग जिसमें पास्ट का गायन करते हैं, इसका फिर बाद में गायन होगा, संगम का फिर अगले कल्प में द्वापर युग से गायन होगा। इस समय ही बाप इस तन में आते हैं, इनको ब्रह्मा को भगवान नहीं कहा जाता है, वो तो फिर अंधश्रद्धा हो जाती है। कोई अगर ब्रह्मा बाबा को भगवान कहे, बाबा कहते वो फिर अंधश्रद्धा हो जाती है। ऐसे भी मनुष्य हैं जो राम को कृष्ण को भगवान समझते हैं, कृष्ण के लिए राम के लिए फिर कह देते हैं वो तो सर्वव्यापी है, श्री कृष्ण के लिए श्री राम के लिए कह देंगे सर्वव्यापी है। कोई कृष्ण पंथी होंगे वो क्या कहेंगे, कृष्ण ही कृष्ण, सब जगह कृष्ण ही कृष्ण। फिर कोई राधे पंथी होंगे वो कहेंगे जहाँ देखो राधे ही राधे। हाँ, तो देखो हर एक अपनी अपनी भावना अनुसार वो समझता, अपने भगवान को सब जगह देखता है। कोई राधे पंथी होते हैं, राधे पंथी वाले कहेंगे सर्वत्र राधे ही राधे हैं, कृष्ण पंथी कहेंगे जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है, राम पंथी कहेंगे जिधर देखो राम ही राम है। समझते हैं राम कृष्ण से बड़ा है, श्री कृष्ण श्री राम को कृष्ण से बड़ा मानते हैं, क्योंकि वो समझते हैं श्री राम तो त्रेता में आया और श्री कृष्ण तो द्वापर में आया, इसीलिए श्री राम बड़ा हो गया। समझते हैं राम कृष्ण से बड़ा है क्योंकि राम को त्रेता में और कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। कितना अज्ञान है, कई तो कृष्ण को बड़ा समझते हैं लेकिन वो समझते हैं द्वापर में आया, तो उस समय ज्यादा असुर थे। किसी के साथ हमारी बहस मतलब बातचीत हो रही थी, तो हमने कहा अच्छा श्री कृष्ण बड़ा या श्री राम बड़ा, तो उसने कहा श्री कृष्ण बड़ा। तो मैंने कहा श्री कृष्ण बड़ा, श्री राम को तो बहुत बड़ा मानते हैं लेकिन श्री कृष्ण बड़ा कैसे, तो श्री कृष्ण तो 16 कला और श्री राम तो 14 कला। तो हमने कहा जो 16 कला है वो तो पहले आना चाहिए, 14 कला तो बाद में आना चाहिए। तो कहा नहीं, श्री कृष्ण द्वापर में इसलिए आया क्योंकि त्रेता में तो फिर भी एक ही रावण था, पर द्वापर में तो कितने असुर थे, श्री कृष्ण ने तो कितनों का वध किया, राम ने तो केवल एक रावण का ही वध किया, तो इसलिए कृष्ण बड़ा हो गया। कृष्ण बड़ा इसीलिए क्योंकि ज्यादा असुरों का वध किया ना, कृष्ण के लिए तो बहुत कुछ दिखाते हैं कितनों का वध किया। तो अलग अलग मान्यताएं हैं। तो बाबा कहते हैं कितना अज्ञान है, अब बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं, कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, जरूर बेहद का बाप भी होगा, इतने बच्चे हैं तो ब्रह्मा के बच्चे तो ब्रह्मा बाप बेहद का बाप भी होगा। तुम कोई से भी पूछ सकते हो, क्या पूछ सकते हो, कभी नाम सुना है प्रजापिता ब्रह्मा का, बाप ने तो स्वर्ग की नई रचना रची है, गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। तो जब तक तुम सब ब्राह्मण ब्रह्मा की मुख वंशावली नहीं बने हो तब तक क्या नहीं बनेंगे, तब तक बाबा कहते हैं दादी का वर्षा भी ले नहीं सकेंगे। जब तक ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं बने हो तब तक दादे का वर्षा ग्रैंडफादर का भी वर्षा नहीं ले सकेंगे। पहले पिता का बनो तब तो दादे का भी बनो ना, तो तब तक दादे का भी वर्षा ले नहीं सकते। बेहद के बच्चे बेहद का वर्षा बाप से ही लेते हैं, लिया था बरोबर कल्प पहले भी, बरोबर स्वर्गवासी थे, अभी नर्कवासी बन गए हैं, अब फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा विष्णुपुरी स्वर्ग रच रहे हैं। कितना सहज है। तो शिव बाबा पूछते हैं, पहले क्या बाबा ने प्रश्न किया, हाँ पहले प्रश्न क्या था बाबा ने कहा, हाँ कौन सा प्रश्न था, पहले भी कब मिले हो नहीं, कौन सा प्रश्न था याद है, हाँ हाँ। तो अब दूसरा प्रश्न सुनो। तो बाबा कहते हैं, बाबा प्रश्न करते हैं, आगे तुमको ये ज्ञान था, आगे तुमको ये ज्ञान था, अब इनकी आत्मा ही कहती है मेरे में भी ये ज्ञान नहीं था। ब्रह्मा की आत्मा भी कहती है मेरे में भी ये ज्ञान पहले नहीं था। तो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पहले तो ज्ञान था ही नहीं, मैं भी विष्णु का पुजारी था। बाबा कहते जो हम पूज्य थे सो अब पुजारी आकर बने हैं, अब फिर बाबा आकर पुजारी से पूज्य देवता बना रहे हैं। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए, परम पिता परमात्मा ने आकर के हमको एडॉप्ट किया है, दत्तक बनाया है ना, अपनी गोद दी है, गोद हम बाबा की गोद में आए हैं, ने आकर हमको एडॉप्ट किया है। मनुष्य मनुष्य को एडॉप्ट करते हैं ना, बहुत मनुष्य होते हैं जिनको अपने बच्चे नहीं होते तो एडॉप्ट करते हैं। अब बाप जानते हैं मेरे बच्चे क्या हो गया, मेरे बच्चों को बाबा क्या जानते हैं कि मेरे बच्चे सब रावण के बन गए हैं, इसलिए मुझे आकर फिर से एडॉप्ट करना पड़े, है मेरे बच्चे पर रावण के हो गए तो फिर मुझे वापस आकर एडॉप्ट करना पड़े। ब्रह्मा द्वारा अपने बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, थे तो बाबा के ही बच्चे ना पर रावण के बन गए थे तो फिर बाबा को आकर एडॉप्ट करना पड़ा। ये एडॉप्शन दत्तक बनाना, गोद का बच्चा बनाना, ये एडॉप्शन कितनी वंडरफुल है। तुम ही जानते हो शिव बाबा ने हमको ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है। शिव बाबा कहते हैं मैंने तुम बच्चों को एडॉप्ट किया है, ब्रह्मा बाबा ने एडॉप्ट नहीं किया, शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है ब्रह्मा द्वारा। तो शिव बाबा कहते हैं मैंने तुम बच्चों को एडॉप्ट किया है, तुमको किस लिए एडॉप्ट किया भगवान ने, हम बच्चों को बेहद के सुख का वर्षा देने लिए। तो धन तो बहुत है भगवान के पास, कोई के पास धन बहुत होता और बच्चे नहीं होते तो एडॉप्ट करते ना, क्योंकि बच्चा हो तो धन उनको देवे। तो बाबा कहते हैं तुमको एडॉप्ट किया है किस लिए, बेहद सुख का वर्षा देने। ये ब्रह्मा तो दे नहीं सकता, ये भी मनुष्य है ना, प्रजापिता ब्रह्मा है, तो प्रजा मनुष्य है तो प्रजापिता भी मनुष्य है। प्रजापिता ब्रह्मा मनुष्य ये ज्ञान नहीं देते हैं, ये ज्ञान का सागर निराकार परम पिता परमात्मा ही बैठ ज्ञान देते हैं। हाँ मनुष्य ज्ञान नहीं देते, ये प्रजापिता ब्रह्मा भी मनुष्य है ये ज्ञान नहीं दे रहा है, ज्ञान का सागर निराकार परम पिता परमात्मा ही बैठ ये ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा को अथवा विष्णु को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, इन तीनों की महिमा अलग है। ज्ञान सागर शांति का सागर ये केवल शिव बाबा की महिमा, ब्रह्मा की महिमा अलग, विष्णु की महिमा अलग, शंकर की महिमा अलग है, ऐसे नहीं कि तीनों की महिमा एक ही है। क्यों अलग है, क्योंकि कर्तव्य अलग है, तो जैसा कर्तव्य वैसा उनका गायन, तो तीनों की महिमा अलग है। ज्ञान सागर पति पावन एक बाप है, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र उनको बुलाते हैं, अंग्रेजी में भी कहते हैं बुलाते समय क्या कहते हैं, ओ लिबरेटर आओ, हमको लिबरेट करो, मुक्ति दाता आओ मुक्त करो। जिससे दुख मिलता है उनसे लिबरेट किया जाता है। बाप भी यहाँ आकर रावण से लिबरेट करते हैं। रावण राज्य भी यहाँ हुआ है, यहाँ ही रावण को जलाते हैं। जलाकर फिर कहते हैं रावण को जलाते हैं, दशहरे पर रावण को जलाते हैं, फिर जलाकर क्या कहते हैं, सोने की लंका लूटने जाते हैं। तो वो बच्चे क्या करते हैं, सोने की लंका लूट के आते हैं। कैसे लूट के आते हैं, वो जो पेड़ के पीले पीले पत्ते होते हैं ना, वो पीले पीले पत्ते ले आते हैं, कहते हैं हम ये सोना लाए हैं, लंका लूट करके ले आए। तो बाबा कहते हैं रावण को जलाकर फिर कहते हैं सोने की लंका लूटने जाते हैं। उनको तो कुछ पता नहीं है कि रावण क्या चीज है, कब का ये दुश्मन है, रावण कब का दुश्मन है। समझते हैं राम की सीता चुराई गई, अब ये नहीं समझते हैं, वो तो समझते हैं राम भी एक था, उनकी सीता भी एक थी और वो रावण ने चुराई, पर क्या नहीं समझते हैं कि हम सब सीताएं हैं, ये नहीं समझते हैं। हम सब सीताएं हैं ये नहीं समझते हैं। हम सब रावण की जेल में फंसी हुई है, ये ज्ञान किसने भी नहीं है। कथाएं तो बैठ वह सुनाते हैं, वह सुनते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं मैं दूर देश का रहने वाला आया हूँ इस पराए देश में। ये पतित दुनिया पुरानी दुनिया है ना, ये रावण की दुनिया है। बुलाते भी हैं, हे बाबा आओ, हम पतित बन गए हैं। तो बाप कहते हैं हमको पावन बनाने इस पतित दुनिया में ही आना पड़ता है, और मुझे आना भी उस तन में है। एक तो पतित दुनिया में आना पड़ता है, दूसरा उस तन में आना पड़ता है जो पहले नंबर में पावन था। कहीं पूछे ना इसी तन में क्यों, तो बाबा कहते हैं ये इनकी आत्मा पहले नंबर में पावन थी, तो उसी के ही तन में मैं आता हूँ। जो सुंदर था वही अब श्याम बना है, कितनी वंडरफुल बातें हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं ये किसको भी पता नहीं है। क्या एक श्री कृष्ण को ही सर्प ने डसा, वो गेंद जो खेल रहे थे बच्चे वो जमुना में जाकर के पड़ा, तो श्री कृष्ण ने वो श्री कृष्ण उस जमुना में कूदा और वहां सर्प ने डसा तो नीला होकर के आया। तो बाबा कहते क्या ये श्री कृष्ण को ही सर्प ने डसा, सत्युग में थोड़ी सर्प आदि होते हैं, ऐसे काली नाग वो ऐसे थोड़ी कोई सत्युग में सर्प होंगे। बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म मेरे कारण पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, सिर्फ मुझे याद करो और पवित्र बनो। सबसे पहले बाबा ने यही वायदा कराया, सबसे पवित्र बनो योगी बनो। तो बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो और पवित्र बनो, अलफ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी। ये है सहज राजयोग, सहज राजाई, राजयोग से राजाई मिलती है, तो सहज राजयोग और सहज राजाई। बच्चा पैदा हुआ और वर्षे का हकदार बना। यहाँ भी बच्चे जानते हैं कि हम बाप के बने हैं तो स्वर्ग की राजाई के हम हकदार हैं। अब बाप कहते हैं सतो प्रधान से तुम तमो प्रधान बन गए हो, फिर सतो प्रधान बनना है। योग और ज्ञान सिखाने में कितना समय लगता है, योग और ज्ञान सिखाने में बाबा कहते एक सेकंड लगता है। तुम आत्मा हो, शिव बाबा को याद करो, बस ये ज्ञान और योग सिखाने में एक सेकंड लगता है। बच्चा पैदा हुआ और वारिस निश्चय किया, तुम बाप के बने हो तो राजधानी का वर्षा तुम्हारा है, परंतु अब तुम्हारा तो है राजधानी का वर्षा, पर परंतु क्यों, परंतु राजा रानी सब तो नहीं बनेंगे। ये है राजयोग, जिसमें राजयोग में राजाई तो मिलती है, तो राजा रानी प्रजा साहूकार गरीब सब चाहिए। राजधानी में तो सब चाहिए ना, खाली राजा रानी अकेला किस पर राज्य करेगा। तो राजा रानी प्रजा साहूकार गरीब सब चाहिए, इसीलिए क्या बना हुआ है, सब नंबर वार है, तो इसलिए क्या बना हुआ है, रुद्र माला भी बनी हुई है। जो भक्ति मार्ग में जपते हैं, तुम जानते हो हम राजयोग सीखने आए हैं, मात पिता को फॉलो कर पहले पहले क्या बनेंगे, मात पिता को फॉलो कर पहले पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। अब सपूत बच्चे वो जो मात पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बने। पुरुषार्थ तो खूब करना चाहिए, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो करते नहीं है ना, बाबा को कैसा अफसोस होता है ना, मेरे बच्चे बाबा को याद करते नहीं है, श्रीमत पर चलते नहीं है, अंदर सच्चाई नहीं है, याद नहीं करते, सच्चाई नहीं है, श्रीमत पर चलते नहीं है। दिल सच्ची हो तो श्रीमत पर भी चले, बाप को याद भी करे, तो सबसे पहले क्या चाहिए, सच्ची दिल, फिर श्रीमत, फिर याद। श्रीमत पर ही तुमको दादी के दादी से वर्षा मिलता है, ब्रह्मा स्वर्ग का वर्षा नहीं दे सकता। दादी की कमाई पर पोतरे का हक लगता है, बाप की कमाई के बच्चे भागीदार बनते हैं तो हकदार है ना, भागीदार बनते तो हकदार है, क्योंकि बाप के साथ ही बनते हैं। बाप की कमाई के बच्चे भागीदार बनते हैं तो हकदार है, बाप को फॉलो करते हैं तो बाप उसको उनको ही देगा, पर दादी का वर्षा तो डायरेक्ट पोते को मिलता। यहाँ तुमको शिव बाबा से वर्षा मिलता है, ज्ञान रत्न बाप से ही मिलते हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मण ही सो फिर देवी देवता बनेंगे। जगदम्बा कौन है, कौन है जगदम्बा, बाप समझाते हैं ये ब्राह्मणी थी। कौन थी मम्मा, जगदम्बा ब्राह्मणी थी, ज्ञान ज्ञानेश्वरी थी, ब्रह्मा की बेटी थी, तो ब्राह्मणी थी, ज्ञान ज्ञानेश्वरी थी, फिर राज राजेश्वरी बनती है। तुम भी ऐसे बनते हो, ज्ञान ज्ञानेश्वर अभी, हाँ फिर भविष्य में राज राजेश्वर। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार क्या होगी, क्या होगा सार, पहला आत्मा में जो तमो प्रधानता के संस्कार है उन्हें याद के बल से चेंज करना है। आत्मा में जो तमो प्रधानता के संस्कार है उन्हें याद के बल से चेंज करना है, सतो प्रधान बनना है। दूसरा, बाप से राजाई का वर्षा लेने के लिए क्या बनना पड़ेगा, सपूत बच्चा। बाप से राजाई का वर्षा लेने के लिए सदा सपूत बच्चा बन श्रीमत पर चलना है, सच्चे बाप से सच्चा रहना है, मात पिता को पूरा फॉलो करना है और ज्ञान रत्नों का दान करते रहना है। वरदान, अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जैसे निरंतर योगी बने हो ऐसे निरंतर विजयी बनो तो सच्चे सेवाधारी बन जाएंगे। निरंतर योगी तो निरंतर विजयी, तब तो सच्चे सेवाधारी बन जाएंगे। क्योंकि विजयी आत्मा जब हर संकल्प हर कदम में विजय का अनुभव करती है तो उनका यह परिवर्तन देख अनेक आत्माओं की सेवा स्वतः हो जाती है। उनके नैन रूहानियत का अनुभव कराते हैं, चलन बाप के चरित्र का साक्षात्कार कराती है, मस्तक से मस्तक मणि का साक्षात्कार होता है। ऐसे अपनी अव्यक्त सूरत से सेवा करने वाली विशेष आत्मा को ही सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। जिनके नैनों से मस्तक से चलन से सेवा हो उसको बाबा कहते हैं सच्चा सेवाधारी। स्लोगन, विशेषताएं व गुण दाता, गुण दाता की देन है। विशेषताएं या व गुण दाता की देन है। दाता को देखो व्यक्ति को नहीं, है ना। जब कोई हमारी महिमा करे तो उस समय क्या कहो, ये बाबा ने दिया है, ये बाबा की देन है। तो विशेषताएं व गुण दाता की देन है। दाता को देखो व्यक्ति को नहीं। अब व्यक्तिशारी सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो के अंतर्गत आत्मिक स्थिति के अभ्यास से वायुमंडल को रूहानी बनाओ। क्या करो, आत्मिक स्थिति के अभ्यास से वायुमंडल को रूहानी बनाओ तो और सब बातें स्वतः ठीक हो जाएगी। सब एक मत और एक रस हो जाएंगे, फिर माया भी नहीं आएगी। क्योंकि वायुमंडल शक्तिशाली होगा। वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए याद के प्रोग्राम रखो और आपस में उन्नति के लिए रूहान की क्लासेस करो, स्नेह मिलन करो, धारणा की क्लासेस रखो तो सफलता मिल जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज तो भट्टी वाले सब जा रहे हैं, भट्टी वाले सब जा रहे हैं, जो सब जा रहे हैं हाथ उठाए। आज भट्टी में आए हुए भाई बहने सब जा रहे हैं, और जो आज नहीं जा रहे हैं वो हाथ उठाए, वो भी है क्या? अच्छा, कल जाएंगे, ट्रेन कल की है। अच्छा अच्छा, और जो शांति वन से आए हैं वो हाथ उठाए, शांति वन से भी आए हैं। आप सबका नाश्ता दिन का भोजन ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में ही होगा। अभी तो आप देख रहे हो समय कैसे बदलता जा रहा है, परिवर्तन देख रहे हो। इस परिवर्तन में हमें भी तो परिवर्तित होना ही है, सब प्रकार का परिवर्तन होना ही है। पानी की भी तंगी होती जा रही है, पेट्रोल डीजल की भी तंगी होती जा रही है, तो सब कुछ हमको उनको बचाना है, तभी तो आगे चल सकेगी ना गाड़ी। चलो अभी बाबा को याद करेंगे।